ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, जिसका नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिस यज्ञ के द्वारा ही हम सब ब्राह्मण मन इच्छित फल प्राप्त करते हैं। मनुष्य यज्ञ रचते हैं तो कोई 7 दिन रचेगा, 5 दिन रचेगा, 15 दिन रचेगा, परंतु बेहद के बाबा ने 80 वर्ष से लेकर के ये यज्ञ रचा है, और जो ये यज्ञ अवृत चलता रहता है। बाबा कहते मैं एक ही बारी आके इस यज्ञ की स्थापना करता हूं और इस यज्ञ के अंदर सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। इस समय पर बाबा इस यज्ञ की स्थापना करते हैं, इसके बाद आधा कल्प के लिए कोई यज्ञ नहीं रचे जाते, क्योंकि उसके बाद नई दुनिया आ जाती। इस यज्ञ में स्व के ऊपर राज करने के लिए, विश्व राज अधिकारी बनने के लिए बाबा हमें इस अश्व को मेध करना सिखाता। भक्ति मार्ग में अश्वमेध यज्ञ रच करके लोगों ने बेचारे घोड़े को स्वाह कर दिया, अभी नहीं कर सकते तो लकड़े के घोड़े बना के स्वाह करते, परंतु बाबा ने हम बच्चों को बताया कि ये जो तुम्हारा शरीर है यही अश्व है, इस अश्व को, इस घोड़े को इसमें स्वाह करना है, अर्थात देह अभिमान को इसमें स्वाह करना है। जब तक इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम देह अभिमान को स्वाह नहीं करते हैं, तब तक ना हम वर्तमान समय स्व के ऊपर राज कर सकते हैं और ना भविष्य में राज अधिकारी बन सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि हम सभी ने बाबा के ऊपर तन मन और धन न्योछावर किया। पहला नंबर तन का आता है, उसके बाद है मन और उसके बाद है धन, क्योंकि अगर तन को स्वाह किया जावे, देहाभिमान को छोड़ा जावे, तो कहा जाता है जहां तुम्हारा तन होगा वहां तुम्हारा मन होगा, और जहां तुम्हारा मन होगा वहां तुम्हारा धन होगा। तो देहाभिमान को छोड़ने के बाद दूसरा त्याग स्वतः ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ हम बच्चों को त्याग करना सिखाता है, जिस त्याग के आधार पर ही हम सब बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाते हैं। त्याग के बिगैर भाग्य नहीं मिल सकता है, इसीलिए पहले पहले त्याग और उसके बाद है भाग्य। अभी हम देखते इस यज्ञ को स्थापन होकर के तो बहुत समय हो गया, परंतु कोई कभी आए कोई कभी आए। मेजॉरिटी देखे गए तो यज्ञ की स्थापना के बाद देरी से ही बहुत बाबा के बच्चे आकर गए, इस यज्ञ में स्वाह हुए, उसके बने, अभी ये जो थोड़ा सा समय बचा है यज्ञ समाप्ति का, इस थोड़े से समय में एक तो देरी से आए, दूसरा फिर ये जो थोड़ा सा समय है इस थोड़े से समय में हमें संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, और बाप समान बन करके हमें कर्मातीत बन वापस अपने घर चलना। हमें पास विथ ऑनर बनना है क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो जब हमें पास विथ ऑनर बनना है तो हमें चारों तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम पास विथ ऑनर बन सकेंगे। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चार मुख्य जो सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये जो चार सब्जेक्ट है, चारों भी सब्जेक्ट में हमें फुल मार्क्स लेने हैं। वैसे भी आप लोगों को मालूम है स्कूल में समझो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें किसी सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छे मार्क लिए और अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो एकदम आगे आने वाला नंबर पीछे चला जाता है। तो उसी प्रकार बाबा तो हम बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं सिखाते, सिर्फ चार ही सब्जेक्ट सिखाते हैं। तो इन चारों भी सब्जेक्ट में हमको फुल मार्क्स लेने हैं तभी हम पास विथ ऑनर हो सकेंगे और ऑनरबुली से हम अपने घर जा सकेंगे, धर्मराज के डंडों से बच सके। तो अभी हम देखते हैं कि आज हमारा जो विषय है सेवा का विषय, जितना हमें ज्ञान में रुचि रख के ज्ञान की गहराई में जा करके पढ़ाई के ऊपर फुल अटेंशन दे करके ज्ञान का सिमरण करके ज्ञान स्वरूप बन के अर्थात ज्ञान को धारणा में ला के चलना है, उतना ही हमारे अंदर योग की भी रुचि रहे, जो हमारे सर्व संबंध एक ही बाप के साथ है, उन सर्व संबंधों को निभाते हुए हमें नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनना है। जब तक सर्व संबंधों की हम रचना बाबा से नहीं लेते हैं तब तक नष्ट मोह स्मृति लब्धा बन नहीं सकते हैं। इसीलिए हम जो गीत गाते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, उसको जब प्रैक्टिकल में लाते हैं तो सहज रीति से सर्व देहधारियों से देह से हमारी बुद्धि का योग टूट जाता है। और बाबा जो हम बच्चों को दिव्य गुणों की धारणाएं सिखाते हैं उन दिव्य गुणों को ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण करते करते हमारा जीवन दिव्य गुण मूरत बन जाता है, जो भविष्य में हमें देव पद की प्राप्ति होती है। अभी चौथा जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सेवा का सब्जेक्ट। वैसा तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को सेवा में बड़ी रुचि रहती है, जो चौथा नंबर है कभी कभी उसको पहला नंबर कर देते हैं और ज्ञान और योग जो है उसको एक साइड रख देते हैं। परंतु ये हमेशा ख्याल में रहे कि जब तक हम स्व का कल्याण नहीं करते हैं तब तक हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा ने जो सब्जेक्ट के नंबर लगा के दिए हैं उसी को बुद्धि में रखते हुए उसी अनुसार अगर हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं तो सहज पास विथ ऑनर बन जाते। अभी सेवा विषय ये ऐसा विषय है, ये सेवा बाबा के दिल के ऊपर चढ़ाती है, सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं हमको दिलाती है, सेवा के आधार पर ही हम विश्व का मालिक बनने के पात्र बनते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सेवा करके अपनी प्रजा बनानी है। जब तक प्रजा नहीं बनाएंगे तो तुम राज किस पर करेंगे। जब बाबा के पास हम लोग पार्टी लेके जाते थे साकार बाबा के पास, तो बाबा जो पार्टी में आते थे उनसे पूछते थे, तुमने आप समान किसी को बनाया है? तो अगर कहते थे हाँ हमने बनाया है, तो बाबा कहते थे प्रूफ दो, तुम किसको लेके आए आप समान बना के? वो कहे बाबा हम तो दूसरों के साथ आए, अभी हमने किसी को लाया नहीं। तो बाबा हंसते थे, बाबा कहते थे बाबा ये नहीं मानता है, बाबा को प्रूफ चाहिए। तो तुम जैसे खुद अपनी जीवन पवित्र और योगी बनाई है, वैसी औरों की भी जीवन बनाओ। साकार बाबा कभी कभी अपनी हिस्ट्री सुनाते थे कि शुरू में जब बाबा को साक्षात्कार हुआ और बाबा ने ये देखा कि मुझे विश्व की बादशाही मिलने वाली है, ये देखने के बाद झूठे जवाहरातों का जो धंधा है वो छोड़ दिया और ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा चालू कर दी। जिस समय पर बाबा के द्वारा ये त्याग हो गया, फिर शिव बाबा ने कहा तुम्हें विश्व का मालिक तो बनना है, परंतु तुम राज किसके ऊपर करेगा? प्रजा के बिगैर तो तुम राजा नहीं बन सकेगा, इसीलिए अभी तेरे को प्रजा बनानी है, अर्थात ही तेरे को सेवा करनी। तो बाबा ने हम सभी को ये पाठ पक्का कराया हुआ है कि आप विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के नाते आपको विश्व की सर्व आत्माओं को संदेश देना है, आपको उनको घर का नई दुनिया का रास्ता बताना। अभी हम देखते हैं सेवा के भी तीन प्रकार हैं, एक है मनसा वाचा और कर्मणा, ये तीन प्रकार हैं। मनसा के द्वारा भी हमें, क्योंकि हम सेवाधारी हैं, कोई कहते हम दो घंटा सेवा करते हैं, कोई कहते तीन घंटा सेवा करते हैं, जिसको सेवाधारी कहा जाता है, सेवाधारी अर्थात जिसकी सारी जीवन ही सेवा। आप अपने से प्रश्न पूछिए, बाबा ने हमें ब्राह्मण क्यों बनाया? बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया यज्ञ की रक्षा करने के लिए, बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया यज्ञ को चलाने के लिए, बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया यज्ञ की संभाल करने के लिए। ब्राह्मण अर्थात ही यज्ञ को संभालने वाले, यज्ञ की रक्षा करने वाले। तो हमारा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है, इसीलिए बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण जन्म ये देवताओं से भी ऊंच है। देवताएं तो वहां प्रलाप भोगते हैं, देवताएं विश्व के मालिक बनते हैं, परंतु देवताएं ये रूहानी सेवा नहीं कर सकते। तुम ब्राह्मण ही रूहानी सेवा करते हो, इसीलिए ब्राह्मण जीवन ये हीरे तुल्य जीवन है और देवताई जीवन ये सोने तुल्य जीवन। आप देखिए कितना अंतर है। तो सेवाधारी जो है वो हमेशा गाए जाते हैं, माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं बाबा ने हमें जो सेवा के प्रकार बताए, मनसा वाचा और कर्मणा सेवा, तन मन और धन से सेवा, संकल्प वाणी और कर्मों से सेवा जो बाबा ने बताई हुई है, अगर ये तीनों भी बातें सदैव तीनों प्रकार की हम सेवा करते रहे, हमारी जीवन ही सेवामय है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक जगह पर बैठे हुए हैं, बीमार है, लेटे लेटे बाबा को याद कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को हमारा भविष्य बनाने के लिए इतनी सरल युक्तियां बताई हैं कि कोई भी इस तन की किसी तकलीफ के कारण भी अपना भाग्य बनाने से रुके नहीं, किसी के पास धन की कमी है तो भी अपना भाग्य वो ऊंचा बना सकता है मन और तन की सेवा करके। जिसके पास धन नहीं है, तन भी बीमार है, तो अपने मनमना भव की स्थिति में रह करके वो ऊंच पद प्राप्त कर सकता। परंतु तीनों प्रकार से अगर सेवा की जावे तो आप समझ सकते हैं कितने थोड़े समय में हम कितनी कमाई कर सकते हैं। अभी दो बातें हैं, एक है बाबा की याद में रह के सेवा करना और दूसरा है सेवा में रह करके बाबा को याद करना। तो जो बच्चे बाबा की याद में रह के सेवा करते हैं वो अपने जीवन को भी अच्छा बनाते हैं, कमाई भी करते हैं, योग युक्त होकर के कर्म करते हैं, इसीलिए उनके कर्मों में सदैव श्रेष्ठता रहती है। पहले याद पीछे सेवा। परंतु जो बच्चे सेवा करते हुए याद करते हैं, अर्थात हम सेवा कर रहे हैं, अगर हमको फुर्सत मिलेगी तो हम याद करेंगे, अगर फुर्सत नहीं मिली तो नहीं याद किया, तो वो अच्छा बनने की इच्छा रखते हैं परंतु अच्छा नहीं बन सकते। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है जिस भी प्रकार की हम सेवा करते हैं हमें बाबा की याद में रह के पीछे सेवा करनी है। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, आप कभी भी ये नहीं कहो कि हम सेवाधारी हैं, हम ईश्वरीय सेवाधारी। ईश्वरीय सेवाधारी, पहले ईश्वर याद आया पीछे सेवा याद आई। आप सिर्फ सेवाधारी कहेंगे, सेवाधारी तो दुनिया में भी बहुत है, जिस्मानी सेवा करने वाले कम है क्या? तो तुम वो सेवा करने वाले नहीं हो, तुम ईश्वरीय सेवा करने वाले हो, गॉडली सर्विस पर हो। तो गॉडली सर्विस कहने से तुम्हें गॉड स्वतः ही याद आएगा और सामने वाले को भी गॉड की याद आएगी। तो बाबा ने ये युक्तियां हम बच्चों को याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए बताई हुई है कि हम सेवा करके अपना भाग्य भी बनाते रहें और उसके साथ साथ स्वयं की उन्नति भी करते रहें। दोनों अगर पैरेलल चलेगा, स्व उन्नति और विश्व सेवा, इससे हमारी डबल कमाई होती रहे। तो अभी हम देखते हैं मनसा के द्वारा जो सेवा है वो ईश्वरीय याद के द्वारा हम सेवा करते हैं। बाबा पतित पावन है, वो हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, परंतु बाबा बच्चों को कम नहीं बनाता है, बाबा हम बच्चों को मास्टर पतित पावन बनाता है। बाबा हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, परंतु ये जो प्रकृति है, प्रकृति को पावन करने के लिए हम ईश्वरीय याद का जब दान देते हैं तो इस प्रकृति में परिवर्तन आता जाता, प्रकृति चेंज होती जाती है। और जब हम प्रकृति को, पांच तत्वों को योग का दान देते हैं तो प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाती है, और हमारे योग बल से ये प्रकृति जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है तो नई दुनिया में हमें शरीर भी सतो प्रधान मिलते हैं और ये प्रकृति भी सुख देने वाली सतो प्रधान होती है। और अंत के समय सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जितनी जितनी हम प्रकृति की सेवा करते हैं तो अंत के समय जब महाविनाश का समय होगा, जब प्रकृति अपना जलवा बताएगी चारों तरफ, उस समय प्रकृति हमें सहयोग करे। समझो बाढ़ है, धरणी कंप है, या ज्वालामुखी है, जो भी है इसके रूप है, इसमें ये प्रकृति हमारे को सेफ रखेगी अगर हमने इसकी अभी सेवा की होगी। इसके ऊपर एक बार अव्यक्त बाप दादा ने बहुत अच्छी समझाने दिया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आज तुम्हें कोई प्रदर्शनी करनी होती है, प्रोग्राम करना होता है, तुम वो जो हाल वाला है उस मालिक के पास जाते हो और उसको बोलते हो हमारे को आप ऐसी ऐसी सेवा करनी है, आप हमारे को फ्री में हाल दो। परंतु क्या होता है, वो आपको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं तैयार होता है? क्योंकि आपने उसको कभी सहयोग नहीं दिया। अगर आपने पहले से उसकी ये रूहानी सेवा की हुई है और फिर आप उससे सहयोग लेने के लिए जाते हो, आपको फट से वो सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। आज हम देख रहे हैं ये रिजल्ट, इतने जो योग शिविर वाले आते हैं, इतने जो ढेर के ढेर कॉन्फ्रेंस में आते हैं बाहर वाले, वो कोई योगी नहीं बनते पर सहयोगी जरूर बन जाते। जिस समय हम सेवा में हमें सहयोग चाहिए और देने के लिए तैयार रहते हैं, तो बाबा ने कहा उसी प्रकार तुम मनसा के द्वारा जब इस प्रकृति को सतो प्रधान बनने में सहयोग देते हो, तो अंत के समय ये प्रकृति तुमको सहयोग देगी। तुम्हारी ट्रेन लास्ट होगी, उसके बाद कोई ट्रेनें नहीं चलेगी। तुम्हारा प्लेन लास्ट होगा, उसके बाद प्लेन बंद हो जाएंगे। जहां पर धरनी कंप होने वाला होगा वहां से तुम खिसक जाएंगे, तुमको प्रेरणा मिलेगी। ये तभी होगा अभी तुमने जब प्रकृति की सेवा की हुई हो। तो मनसा के द्वारा एक तो वायुमंडल को हम पावरफुल बनाते हैं, मनसा के द्वारा हम प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे आप अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, एक सेकंड भी बहुत वैल्यूएबल है, आप उसको सदैव सेवा में लगाओ, सदैव ईश्वरीय याद में रहो। तो जिससे क्या होता जाएगा, सारा वातावरण जो है तमो प्रधानी वातावरण चेंज होके सतो प्रधान हो जाएगा। तो जब हम ब्राह्मण इतनी मेहनत करते हैं मनसा के द्वारा, तो हम ब्राह्मणों का किला भी क्या होता है, मजबूत होता जाता है। जिस प्रकार आपको मालूम होगा द्वापर युग के बाद जो राजाएं आए कलयुग में, तो राजाएं क्या करते थे, दुश्मन तो उनके बहुत होते थे। सतयुग त्रेता में कोई दुश्मन नहीं होता, द्वापर में भी नहीं होते, कलयुग के अंत में होते। तो उस समय वो क्या करते थे, अपने राजवाड़े के आसपास में खंदक खोद के रखते, जिसमें सदैव पानी रहता था या अग्नि रहती थी कि दुश्मन अंदर वार नहीं करें। तो उसी प्रकार आप ब्राह्मणों का जो किला है, उस किले में माया वार नहीं करे, उसके लिए योग की ऐसी अग्नि सदैव अगर प्रज्वलित करके रखें, मनसा सदैव हमारी बाबा के साथ लगी रहे, तो हमारा ये ब्राह्मणों का किला जो है वो सेफ रहेगा और कभी भी माया अंदर घुस नहीं सकेगी। हमारे पास तो नहीं माया आएगी, पर दूसरों को भी हम माया से बचाएंगे, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को विघ्न विनाशक बनाया हुआ है। खुद के विघ्नों को तो दूर करना है, निर्विघ्न तो बनना है, पर औरों के विघ्नों को भी हम विनाश करते हैं अपनी मनसा शक्ति के द्वारा। अभी उसके बाद आप देखते हैं वाणी के द्वारा जो हम सेवा करते हैं, तो वाणी के द्वारा सेवा करते हैं तो हमें अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलते। वाणी के द्वारा सेवा करना मतलब यही नहीं कि बाबा का परिचय देना। बाबा कहता है कि बच्चे मीठी वाणी बोलो, सुखदायी वाणी बनो, कल्याण की वाणी बोलो। तो जितना जितना हम इस वाणी के द्वारा औरों को सुख का रास्ता बताते हैं, सुखदायी बोल बोलते हैं, मीठे बोल बोलते हैं, उतना उतना क्या होता है, अनेक आत्माएं हमें आशीर्वाद देती है। और वाणी के द्वारा ही हम बाबा का भी क्या करते हैं, उनको परिचय देते। तो इसीलिए जो शंख ध्वनि बताया है, विष्णु के हाथ में जो शंख बताया वो हमारी यादगार है। तो वो शंख ध्वनि हमारे को क्या करनी है, शंख ध्वनि सदैव करते रहो कि बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो मनसा जब हम सेवा में लगाते हैं तो मनसा के द्वारा हमारी मनसा पावरफुल बनती है, हम माया जीत बनते हैं। वाणी जब हम सेवा में लगाते हैं तो वाणी को सेवा में लगाने से हमें अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। और तीसरा है अपने तन को हम सेवा में लगाते, जिसको आप यज्ञ की सेवा स्थूल रीति से कहते हैं, तन को सेवा में लगाना, कर्मों से सेवा करना। अभी कर्मों से सेवा करना, आप मनसा के द्वारा योग का दान दे सकते हैं, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान दे सकते हैं सबको, और अपने कर्मों के द्वारा गुणों का दान दे सकते। सबसे बड़ी सेवा है ये। जो भी गुण है वो बोलने से कोई नहीं सीखता है, करके बताने से सीखते हैं। समझो सहनशीलता, अगर हमने उस सहनशीलता को अपने जीवन में धारण कर लिया, अगर हमने हर्षित मुक्ता को अपने जीवन में धारण कर लिया, अगर हमने धीरजता को अपने जीवन में धारण कर लिया, हमारे कर्मों के द्वारा जब वो गुण दिखाई पड़ते हैं, हमें देख करके दूसरे सीखते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये स्लोगन दिया हुआ है, सदैव ये याद रखो, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करें। इसीलिए अपने कर्मों के ऊपर हमें बहुत अटेंशन देना है, परंतु सिर्फ कर्मों के ऊपर नहीं, वाणी और मनसा के ऊपर भी इतना ही अटेंशन रखना है, क्योंकि हम सेवाधारी बाबा के बच्चे हैं। हमारे जैसे संकल्प होते हैं वैसा वायुमंडल बनता है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए हमें पावरफुल संकल्प ही उठाने, और अनेक आत्माओं को बाप से जोड़ने के लिए हमें मधुर वाणी बोलनी है। अगर ये बातें ध्यान में रखते हैं तो सदैव सेवा चलती रहती है। एक हो गई ये कर्मों की सेवा, दूसरी है यज्ञ की सेवा। हम तन से, मन से और धन से सेवा करते हैं। अभी धन से जो सेवा करते हैं, शास्त्रों में सुदामा का मिसाल बताया हुआ है कि सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया तो उसको मैल मिल गए। तो जितना जितना जो यथाशक्ति यथा योग्य, जिसको जितना करना है अपना भाग्य, जिसको जितना बनाना है उतना वो बनाता है, उसको भविष्य में उतने माल मिल। इसके लिए उसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हमेशा ध्यान में रखो कि जो सेवा है, सेवा ये माया जीत भी बनाती है, परंतु कभी कभी सेवा के द्वारा माया भी आती है। आप कहेंगे ये कैसा होगा, सेवा माया जीत बनने का साधन है, परंतु सेवा के द्वारा माया आती है, कैसे? मैं आपको बताऊं। अभी समझो कोई कार्य है, ईश्वरीय कार्य, कोई प्रदर्शनी है, कोई मेला है, कुछ है, तो हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं, संगठन से ये कार्य होते हैं। जब संगठन से कार्य होते हैं तो हम क्या होते हैं, एक दो के संपर्क में आते हैं। जब एक दो के संपर्क में आते हैं तो कभी कभी किसी के भाव स्वभाव आपस में टकराते, तो जब भाव स्वभाव टकराते हैं, टकराएगा पत्थर, पत्थर को टकराएगा तो आग निकलती है, तो उससे फायदा होने के बदले क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता। मम्मा इसके ऊपर बड़ी अच्छी समझानी देती थी। मम्मा कहती थी, देखो कोई तुम्हारे से अगर टकराता है तो भी तुम्हारा नुकसान है, तुम किसी से टकराते हो तो भी तुम्हारा नुकसान। कैसे? अभी देखो दो चीजें हैं, एक है घड़ा और दूसरा है मटका। मटका जो है वो मिट्टी का है और घड़ा जो है वो पीतल का। अगर अगर मटके के साथ अगर घड़ा टकराएगा तो क्या टूटेगा? मटका ही टूटेगा। अगर मटका घड़े के साथ जाके टकराएगा तो क्या टूटेगा? मटका ही टूटेगा। तो कोई मेरे साथ टकराएगा तो भी मेरा ही नुकसान, मैं उसके साथ टकराऊंगा तो भी मेरा ही नुकसान होगा, इसीलिए मेरे को मेरा सिर संभाल के रखना चाहिए। मुझे किसी से कभी भी टकराना नहीं है, मुझे किसी से कभी टकराना नहीं है, मुझे मोल्ड होके चलना है। क्यों? क्योंकि मुझे रियल गोल्ड बनना है। रियल गोल्ड जो होता है उसमें मोल्ड होने की शक्ति होती है। सच्चे सोने के जेवर नहीं बनते हैं। अगर बंगड़ी बनाएंगे ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगी, इसीलिए उसमें खाद जरूर डालनी पड़ती है, मोल्ड नहीं होता है कभी। तो उसी प्रकार मुझे रियल गोल्ड बनना है, इसीलिए मुझे मोल्ड होकर के, मुझे मिलकर के सबसे चलना है। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, जब तक आप झुक करके नहीं चलेंगे, कहा जाता है दुनिया झुकती है पर झुकाने वाला चाहिए। अगर झुकाने वाला है तो दुनिया उसके आगे जरूर झुकती है, झुकाता कौन है जो खुद झुकता है। तो ये बाबा ने जो हम बच्चों में निर्माणता का गुण दिया है, विश्व का नवनिर्माण वो ही कर सकते हैं, चाहे वाणी की सेवा है, चाहे कर्म की सेवा है, चाहे तन की सेवा है, चाहे धन की सेवा है, निर्माणता के बगैर आप सेवा नहीं कर सकते। आज देखो रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, आप उसको कैसा उठाएंगे? आप उसको हाथ देंगे ना? हाथ देने के लिए आपको नीचे झुकना पड़ेगा। आप सीधा खड़े होके हाथ दो, आप उसको नहीं उठा सकते। तो गिरे हुए को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। तो जब ये बात हमारे बुद्धि में है तभी हम औरों का उद्धार करने के लिए झुकना सीख जाते। हमारा बाबा कितना झुकता है, कितना निर्माण है देख। तो अभी हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, ब्राह्मणों में भी जब सेवा के फील्ड में आते हैं तो एक दो के भाव, कभी खुद का स्वभाव उनको हैरान करता है, कभी दूसरों का स्वभाव हैरान करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, एक दो से किनारा कर लेंगे, हम उसके साथ सेवा नहीं कर सकते। क्यों? नहीं, हमारा और उनका नहीं संस्कार बनता। बाबा कहता है एक दो से किनारा नहीं करो, एक दो का सहारा बनो। किनारा करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें एक दो का सहारा बनना है। अरे कोई चल नहीं सकता है तो उसको हाथ दे के सहारा दिया जाता है या उसको देख के मुंह फेरा जाता है। जब ये मालूम है कि इस व्यक्ति में ये डिफेक्ट है, ये बेचारा इस संस्कार के अधीन है, पुराने संस्कार, ये बीमारी है ना, तो बीमार को देख के आपको नफरत आएगी या रहम आएगा? तो उसको देख के तो रहम करना चाहिए और ही उसको मदद करनी चाहिए, उसका वो संस्कार चेंज हो जावे। अगर आप ब्राह्मणों से किनारा करेंगे, किनारा करते करते एक दिन उस किनारे पहुंच जाएंगे। इसीलिए संभालना, कभी भी किसी से किनारा नहीं करना। देखो हमारे बाबा का यज्ञ के साथ कितना प्यार है, हमारे बाबा का बच्चों के साथ कितना प्यार है, बाबा कितना खुश होता है। खास पुरानी दुनिया पुराने तन का आधार लेकर के हम बच्चों से मिलने के लिए आता है और हम बच्चों के साथ कितना प्यार करता है, हमारे ऊपर कितनी मेहनत करता है। बाबा क्यों इतना प्यार करता है? क्योंकि 5000 बरस के बाद बच्चे मिले। अच्छा, बाबा को 5000 बरस के बाद मिले, हम भाई बहन कितने बरस के बाद मिले? हम भी तो 5000 बरस के बाद मिले। आज किसी का भाई या बहन गुम हो जाता है, कोई 15 दिन के बाद भी मिलेगा, कितने खुश होते, अरे मेरा भाई खाना अच्छा नहीं लगता है, मेरा भाई गुम हो गया, मिलता नहीं है, और फिर मिलेगा तो कितने खुश होते हैं। और हम 5000 बरस के बाद मिले तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए एक दो से मिलकर। खुशी होती है ना आप लोगों को, इतना बड़ा परिवार देख के खुश होते हो ना, इसीलिए आते हो ना मधुबन। हाँ वहाँ तो होता ही है, सेंटरों पर तो परिवार है पर छोटा परिवार है, मधुबन में क्यों भागते हो? आपको क्या खींचता है? ईश्वरी परिवार का प्यार खींचता है, वातावरण खींचता है। तो इसीलिए हमारा सबके साथ प्यार होना चाहिए, अज्ञानियों के साथ भी प्यार और ज्ञानियों के साथ भी प्यार। अज्ञानियों से भी नफरत मत करो, हम भी तो पहले अज्ञानी थे ना, ये तो बाबा ने आके हम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है, बाबा ने हमारे ऊपर मेहर किया है, बाबा ने हमारे ऊपर रहम किया है। अभी हमें क्या करना है, बाबा का पाठ बजाना है, हमें भी उनके ऊपर रहम करके उनको वापस इस रास्ते के ऊपर चलाना। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखो कि हम जो भी सेवा करते हैं, सेवा से हमको शक्ति मिलनी चाहिए, सेवा से हमको खुशी मिलनी चाहिए, सेवा से हमारी कमाई होनी चाहिए, हमारी गमाई नहीं होनी चाहिए। वो तभी होगी जब हम आपस में मिलकर के चलेंगे। उसके लिए एक नामी बनकर के और एकता में रह के जब कार्य करेंगे तभी सेवा आगे बढ़ती जाएगी। और कभी भी नाम मान शान के लिए सेवा मत करो, हमारा नाम होना चाहिए। ये काम किसका है, किसकी सेवा है? शिव बाबा की सेवा, शिव बाबा की है। जिसका धंधा है उसका नाम होगा या सेल्समैन का नाम होगा, किसका नाम होगा? तो हम सभी सेल्समैन हैं, हम लोग बाबा का जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का माल है वो लोगों को देते हैं, तो हम सेल्समैन हो गए तो नाम किसका होगा? बाबा का होगा ना, तो हम कैसा इच्छा रख सकते हैं हमारा नाम हो गए? रॉन्ग है या राइट है? तो ये जो इच्छाएं हैं ना कि हमारा नाम होना चाहिए, हम इतनी सेवा करते फिर हमारा कुछ मान थोड़ा ही होता है, क्या मान चाहिए? बाबा कहता है तुम्हारी अभी तक पूजा हो रही मंदिरों में, कौन सा मान चाहिए? क्या मान चाहिए ये तो बताओ? विधि पूर्वक पूजा हो रही तुम्हारे नाम से, वो ब्राह्मण पेट भर रहे, तुम्हारा नाम कितना बड़ा है, और कौन सा नाम चाहिए तुम? तो हमें बाबा का नाम बाला करना है, अपना नाम नहीं करना है। परंतु ये जो इच्छाएं हैं, हद की इच्छाएं, ये हद की इच्छाएं कभी भी किसी को अच्छा नहीं बनने देती। तो सेवा में हमको कभी भी हद की कोई किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनकर के चलना। बाबा कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण, एक हाथ करे दूसरा हाथ देखे भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जब ऐसी भावना हमारे अंदर होती है तभी सेवा जो है वो हमको शक्ति देती है, सेवा हमारा भाग्य बनाती है, सेवा हमको आगे बढ़ाती है, अनेक आत्माओं का हमारे द्वारा कल्याण कराती है। नहीं तो क्या होता है, आगे बढ़ने के बजाय और दो कदम पीछे हो जाते हैं। इसीलिए हमको पीछे नहीं हटना है परंतु सदैव आगे चलना। अभी हम देखते हैं दो प्रकार की सेवा होती है, एक स्थूल सेवा होती है और दूसरी क्या होती है, वाणी के द्वारा सेवा होती है। मनसा की तो हुई, वाणी की सेवा हो। किसी किसी को सिर्फ वाणी की सेवा में ही बहुत इंटरेस्ट होता है, तो भाषण करेंगे तो हम लोग स्टेज पर बैठने चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे को पूछा नहीं हमने प्रोग्राम, अरे काय का क्या, हाँ क्या जरूरत पड़ी है इसकी, कहाँ भी बैठो कुछ भी करो, हाँ ये क्यों इच्छा रख के बैठते हैं तुम? बाबा कहता है, बाबा हमेशा बताते थे यज्ञ में शुरू में अपने पास वहां कराची में गायें थी, तो उनका गोबर होता था तो बैठ करके गोबर थपते थे, गोबर थपते हैं ना फिर उसको जलाते हैं, तो बाबा कहता था तुम ये उसको सिंधी में छेना बोलते हैं, छेना थपो भले बैठ करके, परंतु गोबर थपते हुए छेना थपते हुए अगर तुम्हारी स्थिति ऊंची है तो तुम्हारे में से देव या देवी का साक्षात्कार हो, और तुम भाषण कर रहे बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे और तुम्हारे स्थिति का ठिकाना नहीं है तो किसी को कुछ भी अनुभव नहीं हो। तो कर्म भले हल्का हुए परंतु स्थिति ऊंची। तो यज्ञ की हमें कोई भी सेवा मिले, सेवा ये भाग्य बनाने का साधन है। अगर हम विधि पूर्वक उस सेवा को स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा भाग्य बनता है। परंतु अगर हम समझते हैं ये कोई मेरा काम थोड़ा ही है, मेरे को बोला ये करने के लिए, मेरा काम नहीं है, मैं तो बड़ा ऑफिसर हूं, मैं फलानी हूं बड़ी, अगर ऐसा आया मेरे को तो गए काम से। कभी कभी क्या बोलते हैं, अभी हम बाबा बोलता है ना नयों को चांस दो, हमने अभी बहुत सेवा कर लिया, होते हैं खुद की कमी होती है, खुद थक गए हैं सेवा करके, समझा, कोई भाव स्वभाव से थक गया, कोई किसी सरकमटेंस से थक गया, फिर क्या कहेंगे, अभी हमने तो बहुत सेवा कर लिया, अभी दूसरों को चांस दो ना आप। अरे सेवा का चांस मिलना माना ऊंचे भाग्य की ऑफर होना। आज मेरे पास ऊंचा भाग्य आ रहा है और मैं उसको रिफ्यूज करूं, हे भाग्य तू मेरे पास नहीं आना, दूसरे के पास जा। देखो बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे रखा, कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा मैं पहले मैं आगे, हमेशा बच्चों को आगे रखा। परंतु सेवा में और पुरुषार्थ में कौन आगे रहा? सेवा और पुरुषार्थ में बाबा सदैव ओटे सो अर्जन पहला नंबर रहा, इसीलिए पहला नंबर बन। आप देखते हो ना बाबा की हिस्ट्री, आपको मालूम है, लास्ट में बाबा जा रहा है अव्यक्त बन रहा है, उस समय भी लास्ट मुरली चला करके पीछे बच्चों को शिक्षा दे करके महामंत्र दे करके निराकारी निर्विकारी निरंकारी भव का महामंत्र दे के पीछे जाके बाबा अव्यक्त बना। मम्मा की क्या हालत थी। मम्मा ने जब ये शरीर छोड़ा, अंत की घड़ी थी मम्मा की। और बाबा ने उस समय कहा, मम्मा देखो बगीचे का अभी अभी अंगूर निकला है, अपने हाथ से बच्चों को अंगूर खिलाओ। ऐसे ऐसे समय पर मम्मा ने बैठ करके, मम्मा बैठ नहीं सकती, लेटी हुई थी, पूरे हाथ भी नहीं हिलता था, वो जो जमुना थी वो उसने ऐसा मम्मा का हाथ रखा, मम्मा के हाथ पर अंगूर रखती थी, जो आता था उसको ऐसा, वो हाथ ऐसा करती थी मम्मा का, मम्मा उनको अंगूर दे, अंगूर दे के पूरा किया, 150-200 जो भी भाई बहन थे, तभी तो कम होते थे ना भाई बहन, वो पूरा किया और मम्मा ने शरीर से, आप बताओ, अंत तक सेवा किया। आज हमारी जानकी दादी है 102 बरस की, उसको कितनी लगन है देखो सेवा में, कहाँ कहाँ भागती है, फॉरेन नहीं छोड़ती, कोई देश नहीं, कोई विदेश नहीं, सब तरफ क्यों जाती है, नहीं मेरे को जो मिला है वो सबको मिलना, इधर क्यों आती, मेरे को जो प्राप्ति हुई है वो औरों को बोले मिले, ये है ईश्वरीय प्यार कि हमारे भाई बहन है ना, इनको भी तो वो प्राप्ति होनी चाहिए, इनको भी तो वो वासना आनी चाहिए। तो जब हमारा परिवार है तो हमारा प्यार भी है, हमारा परिवार भी तो माला माल बने ना, हमारे पास सिर्फ है माल तो क्या होगा, हम जितना दूसरों को बांटते हैं उतना क्या होते है? हमारा बढ़ता जाता है, ये खजाना फूटता नहीं है, आप जितना देंगे उतना बढ़ेगा, अगर आप रख देंगे यूज नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा, तो इसीलिए यूज करो, खुद के कल्याण के प्रति लगाओ, अन्य आत्माओं के कल्याण के प्रति लगाओ, फिर देखो आपको, आप सदैव खुशी के झूले में झूलते रहेंगे, इसकी रिजल्ट ये है, आपकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकेगी, क्योंकि आप दूसरे को खुशी बांटते हैं, कर्म क्षेत्र है, तो जितनी हम औरों को खुशी बांटते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे सामने खुशी आती है। हम औरों को शक्ति देने का रास्ता बताते हैं, हमें उससे ज्यादा बाबा बहुत शक्ति देता है, तो इसीलिए हम दाता के बच्चे होने के कारण हमारे को देना सीखना है, सदैव देते रहो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ दाता नहीं परंतु तुम वरदाता भाग्य विदाता हो। देखो बाबा ने आके हमारे भाग्य का उदय किया, परंतु सिर्फ हमारे भाग्य का उदय नहीं किया, हमारा भाग्य उदय करने के लिए बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों की कलम दिया और हमें मास्टर भाग्य विदाता बना करके बाबा ने कहा बच्चे जाओ जाके जिसका चाहिए उसका भाग्य तुम उदय करो। तो बाबा हम बच्चों को शेर कुल्ले पर चढ़ाता है, बाबा ने कहा देखो बाप बच्चों को सिर पर बिठा दो। तो बाबा हम बच्चों को जब इतना आगे रखता है तो हमारा काम क्या है, उसको यथार्थ रीति से जान करके और फिर क्या करना, अपने भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाना। तो इसीलिए कोई भी सेवा मिले आपको, स्थूल सेवा मिले, तन की मिले, मन की मिले, धन की, जिसको जो यथाशक्ति जैसा जो कर सके, कोई जबरदस्ती नहीं, परंतु कभी भी सेवा के लिए रिफ्यूज नहीं करना। सेवा को हमेशा ये बात अपने बुद्धि में रखो, सेवा को रिफ्यूज करना माना अपने ऊंचे भाग्य को रिफ्यूज करना, ऊंचे भाग्य को बोलना कि तू मेरे पास नहीं आ, दूसरे के पास जा, नहीं मेरे पास आ रहा है तो मैं क्यों नहीं ये करूं। और जितना जितना देखो वैसा भी कहा जाता है, जो चुल पर है सो दिल पर है। घर में भी समझो दो बहुएं होती है ना, जो सारा समय किचन में होगी, सबको खिलाएगी पिलाएगी पकाएगी तो सबको अच्छी लगती है, जो सिर्फ कुर्सी पर बैठी रहेगी उसको कौन प्यार करेगा। तो ये भी ऐसा है ना, जो सेवा करेंगे वो सबको प्रिय लगेगा। अभी गीत भी था ना, सेवा करने वाले सबको प्रिय लगते हैं, सारे परिवार को भी प्रिय लगते हैं, बाप को भी प्रिय लगते हैं, परंतु सेवा नहीं करेंगे तो कैसे प्रिय लगे। दूसरों को प्रिय लगना तो छोड़ो, पर सेवा करने के बाद हमारी जीवन हमको ही प्रिय लगती। तो अपने जीवन के वैल्यू को जान करके हमें उसका पूरा पूरा फायदा लेना है। और ये एक ही समय है संगम युग, ये है कमाई का युग, और तो खाने का युग है, सतयुग त्रेता युग क्या है, बैठ के खाने का युग, द्वापर से तो कमाओ और खाओ हा? परंतु आधा कलब की कमाई हम अभी बैठ के करते हैं, तो आप ही बताओ इतने थोड़े से समय में हमको 21 जन्मों की कमाई करनी है, तो हमारा कमाई की तरफ कितना ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए कमाई की तरफ ध्यान दे करके अपनी पूरी पूरी झोली भरो, अन्य आत्माओं की झोली भरो, उनकी दुआएं लियो और आगे बढ़ते जाओ। ओम शांति।
तेरी राह।